संध्याकालीन बेला में आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन पहुंचे हैं। कहेंगे उनके लिए दिल खोल देते हैं दिलाराम के साथ, दिल खोल देते हैं दिलाराम के साथ, तो खोलने न पड़ते हैं औजारों के साथ, दिल को शिव बाबा से जोड़कर सबसे जुड़वाने वाले, दिल की रक्षा सुंदर भावनाओं से करना सिखाकर आत्माओं को दिल के रोगों से मुक्ति दिलाकर आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी हमारे बीच आए हैं। शिव बाबा की शिक्षाएं और प्रेम स्वयं में समाकर तो आदरणीय भाई जी का दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और आपको नमन करते हैं। भाई जी के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी, हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दें। तो आप बाबा के चैतन्य बगिया के वो रूहे गुलाब हैं जिन्होंने बाबा, दादियां और दीदियों के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत सानिध्य पाया है, अनेक विशेषताओं से आप संपन्न हैं। RMM ग्लोबल हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के आप डायरेक्टर हैं। आप बाबा के वो विशेष रतन हैं जिन्होंने अथक पुरुषार्थ कर आध्यात्म को मेडिकल साइंस से जोड़कर एक चमत्कारी प्रोजेक्ट लाया जो हजारों हार्ट पेशेंटों को ओपन हार्ट सर्जरी से भी बचाया। भाई जी का फंडा है, भाई जी हमेशा कहते हैं दिल की बीमारी एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और इसको वो प्रैक्टिकल भी करके उन्होंने कैड कैंपों के द्वारा सबके सामने उसको प्रत्यक्ष किया है कि मात्र दिनचर्या, डाइट, चिंतन को परिवर्तन करके आप अपने आप को जीवन, नव जीवन दे सकते हो। आपने अनेकों इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। आपका हर्षित मुख चेहरा, सरल व्यक्तित्व, सेवा की लगन अपनी छाप छोड़ती है। तो आज हमारे बीच साझा करेंगे पाप कर्म और विकर्म विनाश करने की विधि। बाबा ने, दादियों ने बहुत बताया है, लेकिन भाई जी ने उसको बहुत मंथन चिंतन करके अनुभव के साथ आज हमारे बीच साझा करेंगे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी।
ओम शांति। चलिए हम इस विषय पर रूढ़ियान करने से पहले पाप कर्म और विकर्म को कैसे विनाश करें, कैसे भस्म करें, इस विषय पर रूढ़ियान करने से पहले चलिए एक मिनट के लिए हम इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में उस अशरीरी बाप से कंबाइंड हो, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाओ। मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो। ओम शांति। हम समझेंगे कि पाप कर्म और विक्रम ये क्या है, दोनों में क्या फर्क है और उनको फिर विनाश कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हर ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है। कल की मुरली सुनी ना आपने, क्या थी? संगम युग क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। संगम पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने का युग है ना। सब बंधन और बोझ बाप के हवाले करके हमें क्या करना है? मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, डबल लाइट बनना है। कल की यही मुरली थी ना, राइट? सबने पढ़ी थी, सुनी थी सबने कल मुरली? सुनी, उसका मनन चिंतन किया। तो बाबा ने ये, अभी हमें मुक्ति की स्थिति का अनुभव करना है, अभी ही हमें जीवन मुक्त बनना है। मुक्ति का मतलब क्या है? इस जीवन में रहते हुए हमें 63 जन्मों के पापक्रम हमारे भस्म हो जाए। 63 जन्मों में जो भी हमने पापक्रम या विक्रम किए हैं वो भस्म हो जाए, उसे कहेंगे मुक्ति। अर्थात हमें कोई भी कर्म खींचे नहीं, हम कर्म के संबंध में आए किंतु कर्म हमें बंधन ना बन जाए, राइट? क्योंकि अभी हमने पाप कर्म खत्म नहीं हुए हैं, हमने विक्रम जो किए थे वो खत्म नहीं हुए, इसलिए अभी हमें खींचते हैं। अच्छे कर्म भी करो तो भी खींचते हैं और बुरे कर्म हो जाए तो भी खींचते हैं। किसी के साथ अच्छा करो तो भी नुकसानदायक बन जाता है, तो भी एक मोह का रूप ले लेता है या किसी और चिंता का भय का रूप ले लेता है। और अच्छे बुरे करो तो बुरे तो है ही, पाप कर्म तो है ही नुकसानदायक। मन परेशान तो होगा आपका, दुखी तो होंगे, बाबा को योग तो लगा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? अभी हम इसको गहराई से समझते हैं। पहले तो हम समझे, इससे पहले समझे हम कर्म क्या चीज है। कर्म खाली हाथों से क्या कर्म की बात नहीं है, इन कर्मेंद्रियों से भी जो कर्म करते हैं वो भी कर्म है। आंख देखना भी कर्म है, राइट? कितने विकारों के वश किए हुए कर्म, 5 विकारों के वश किए कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। जो महाभूत है ना 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके वश जो हम कर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। जिसमें पाप कर्म में कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं। जैसे काम विकार में भी 2 व्यक्ति चाहिए, किसी के प्रति गलती गंदे दृष्टि रखोगे तो उसमें 2 व्यक्ति चाहिए। क्रोध भी किसी, अपने आप खाली तो नहीं करोगे, किसी व्यक्ति पे करोगे तो अपनी एनर्जी जलाओगे, उसकी भी जलाओगे, अपने को भी जलाओगे, उसको भी जलाओगे। काम विकार में भी खुद जलते हो, साथ सामने वाले को भी जलाते हो। ऐसे लोभ में भी हम लोभ करते हैं, चीजों का लोभ होता है, वस्तुओं का लोभ होता है, उसकी जिस चीज ले लेते हैं हड़प लेते हैं, जिसके नामान शान भी हड़प लेते हैं, नामान शान का भी लोभ होता है, तो वो भी उसकी हड़प लेते हैं, उसकी मिलना उसको चाहिए था, हमने नहीं ले लिया उसकी जगह, तो ये भी लोभ हुआ ना। तो लोभ भी जो है, दूसरे का हम कोई नुकसान करते हैं ना तो उसको नुकसान हुआ, हमें भी हुआ। और मोह भी किसी व्यक्ति के व्यक्ति से होगा, वहां भी 2 व्यक्ति हो गए, है ना। और अहंकार भी किसी पे करेंगे, किसी को दिखाएंगे अपनी ईगो, तो अहंकार भी ऐसा, उसे कहेंगे पाप कर्म। और विक्रम क्या है? देखिए जो है ना, हमारा जो एक तो देहभान है, द्वापर युग से देहभान आया ना, फिर देह अभिमान आया। देहभान तो सत्युग में भी होता है, देह तो है ना सत्युग में, पर सतो प्रधान देहभान है। और फिर त्रेता में सतो है, द्वापर में रजो देहभान आ जाता है, और साथ साथ देह अभिमान द्वापर से शुरू होता है, मेल फीमेल का भान द्वापर से शुरू होता है, राइट? तब ये विकार आने शुरू होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जैसे जैसे इसके तो देहभान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, फिर देह अभिमान से जो हमें पदार्थ जो होते हैं ना, हमारी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, मेरी पर्सनल वस्तुएं, देह अभिमान के पदार्थ। और फिर देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इन 5 विकारों के वशों के जब कर्म करते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर 10 आसुरी संस्कार पैदा होते हैं, आसुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। जैसे आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, दोष दर्शन, हम बगले बन जाते हैं। सत्युग में हम हंस होते हैं, एक दूसरे के गुण देखते हैं, हमें मोती दिखाई देते हैं, कंकड़ पड़े हों तो भी हमें मोती दिखाई देते हैं, और बगले को क्या दिखाई देता है? हजारों मोती पड़े हों उसमें दो कीड़े पड़े हों कीड़े दिखाई देते हैं। तो द्वापर युग से हम क्या बन जाते हैं? द्वापर में इतने नहीं, कलयुग में आके, कलयुग की शुरुआत से हम ज्यादा इसमें चले जाते हैं, तो दूसरों के अवगुण देखने लगते हैं, दोष दर्शन, बदलने की भावना पैदा होने लगती है, किसी पे निश्चय और विश्वास खत्म हो जाता है। समाज में रहने के लिए, घर के लिए क्या चाहिए होता है? समाज के लिए निश्चय और विश्वास चाहिए होता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी वजह शक और अनुमान शुरू हो जाता है, संशय बुद्धि बन जाते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, और चिंता और भय शुरू हो जाती है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? बेफिक्री चाहिए ना, और क्या चाहिए? निर्भयता चाहिए, किंतु वो क्या शुरू हो जाता है उसकी बजाय? चिंता और भय एक आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। और सत्युग में हम धैर्यता होती है, गुण है, धैर्यता एक गुण है, दैवी गुण है, उसकी बजाय जल्दबाजी, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, इसको टाइप ए बिहेवियर कहते हैं, कंपटीशन कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है, और फिर ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाती है। तो 10 ऐसे आसुरी संस्कार हैं, जैसे आज की मुरली में भी क्या था, नाजुकपना और रोसना रोना, ये भी क्या है? आसुरी संस्कार है। तो ये जो था नाजुकपना, माना सेंसिटिव नेचर, किसने कुछ कह दिया बहुत फील करते रहते, बहुत फील, किसने कुछ कह दिया उसके बाद विचारों के पीछे पीछे विचार, विचार के पीछे विचार, व्यर्थ विचार आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, कंट्रोल ही नहीं होगा, नींद भी खत्म हो जाएगी, फिर रोना, फिर भावुक हो जाएंगे, है ना। तो सेंसिटिव नेचर में ना नाजुकपना, नाजुक नेचर, है ना, फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, और इमोशनल में रूसना रोना, भावुक हो जाते हैं, फिर रोना शुरू हो जाता है, राइट, भावुक हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं होंगे इमोशंस, है ना, तो ये हो जाता है। तो ये बाबा कहता है ये छोड़ना पड़ेगा, ये देह अभिमान के कारण ही पैदा होता है। तो ये 10 जो आसुरी आदतें हैं ना, आलस्य में कर रहा हूं, किसका नुकसान कर रहा हूं क्या? मैं आलस्य कर रहा हूं, अमृत वेला मिस कर दिया, मुरली मिस कर दी, है ना, अलबेलापन, मुरली में बैठा हूं किंतु कुछ और विचार, कुछ और पढ़ रहा हूं, कुछ और विचार चल रहे हैं, मोबाइल में देख रहा हूं, व्हाट्सएप देख रहा हूं, ना क्या है ये अलबेलापन, है ना, भगवान मुझे पढ़ा रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, मुरली सेंटर पे चल रही है, मैं घर में बैठ के टीवी पे मुरली सुन रहा हूं, और घर में वो शोर भी मच रहा है ना, वातावरण है क्या, वायुमंडल तो है ही नहीं वहां पर, तो अलबेलापन है ना, क्लास में आने की बजाय हम अलबेलापन कर रहे हैं ना, नुकसान किसका कर रहा हूं, अपना कर रहा हूं ना बस, है ना, किसी के अवगुण देख रहा हूं, आपको नहीं पता मैं आपके अवगुण देख रहा हूं, और अपने मन में जहर भरता जा रहा हूं आपके प्रति, नुकसान मेरा हो रहा है, बदलने की भावना, आपने कुछ किया आपको पता भी नहीं है, और मैंने कहा इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी इसको ऐसा करूंगा, और दिन रात उसी में जल रहा हूं, राइट। इसी तरह से हमारा जो है शक अनुमान, निश्चय की बजाय विश्वास नहीं, संशय बुद्धि बन गए, अनुमान लगाने लगते हैं, चिंता भय, मैं अपना नुकसान करता हूं, जल्दीबाजी करता हूं, ईर्ष्या द्वेष अपना, इसे कहते विकर्म, ये वैध संकल्प है, हम किसका नुकसान नहीं करें, तो ये ऐसे समझ लीजिए एक सूखी लकड़ी होती है, उसे आग में डालो, उसे आग लाओ, जल के भस्म हो जाती है, वो तो हो गए पाप कर्म, ठीक है, और गीली लकड़ी को जलाओ तो क्या होता है, और जलती नहीं है, क्या करती है, धुआं देती है, और किसी काम की भी नहीं देती है। तो विक्रम ऐसे हैं, यस, तो पाप कर्म और विक्रम कैसे इनको विनाश करें? अब कर्म क्या चीज है, देखना भी कर्म है, कई बार मैंने देख लिया, देखना भी कर्म है, अगर मैंने विकारों के वश होकर देखा, चिंता भय के वश देखा, ईर्ष्या द्वेष के वश देखा, तो पाप कर्म विकर्म है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वश किसी को देखा तो वो पाप कर्म है, राइट। पढ़ना भी कर्म है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुरली पढ़ रहा हूं या कुछ और पढ़ रहा हूं, क्या देख रहा हूं, विकारों की चीज देख रहा हूं तो पापक्रम है, पांच विकारों की बात, आसुरी स्वभाव वाली बात है, और आसुरी संस्कार वाली आते हैं तो वो विक्रम है, राइट, समझ में आई ये बात आपको। सुनना भी विकर्म है, पापकर्म और विकर्म। अगर पांच विकारों की बातें सुन रहा हूं तो वो क्या है, पापकर्म है। अगर मैं दूसरी बातें सुन रहा हूं, आलस्य अलबेलेपन वाली, दोष दर्शन बदला लेने की, दूसरे की बुराई सुन रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं, तो ये सब मैं बोल रहा हूं, किसी की बुराई के बारे में सुन रहा हूं तो विकर्म है, और काम क्रोध लोभ अहंकार की बातें बोल रहा हूं तो विकर्म। राइट, ऐसे खाने पीने की बात भी है, तामसिक भोजन खा रहा हूं, किसी और के हाथ का भोजन खा रहा हूं, होटल रेस्टोरेंट में खा रहा हूं, शादी ब्याह में खा रहा हूं, तो क्या है, ये भी विकर्म है। पानी भी पी रहा हूं, बाबा की याद में नहीं खा रहा हूं, बाबा की याद में नहीं पी रहा हूं, तो ये भी विकर्म है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमारा हर कर्म हम किस भावना से कर रहे हैं, किस स्मृति से कर रहे हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार के वशों के कर रहे हैं या दैवी गुणों के, दैवी स्वभाव दैवी संस्कार के हिसाब से कर रहे हैं। बाबा की याद में कर रहे हैं या दे के संबंधियों की याद में कर रहे हैं, दे के पदार्थों की याद में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म हिसाब किताब है। हाथों से भी कर्म करते हैं, चलते भी ना पैदल, अगर बाबा की याद में कर रहे हैं तो शेष कर्म है, किंतु अगर हम कोई विचार चल रहे हैं, ऐसे ही दुनियावी विचार चल रहे हैं, दुनिया की खबरें चल रही हैं, आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या कोई व्हाट्सएप देख रहे हो और बातें करते करते चल रहे हो, तो ये भी पापकर्म, पापकर्म और विकर्म है। अब इसको विनाश कैसे किया जाए, आप में से कितने भाई बहन हैं जो चाहते हैं हमारे विक्रम पापकर्म और विक्रम विनाश हो जाए, हाथ उठाओ जी, देखें जो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं पूरा ऊंचा होता तो ऊंचा पूरा सीधा, राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला राइट, चलिए बहुत अच्छा। देखिए विक्रम विनाश करने तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं इसके ना, वैसे विक्रम विनाश तीन तरह से होते हैं, दो स्थितियां हैं, किसी और स्थिति में विक्रम विनाश नहीं होते। अशरीरी आत्मा बन के परम शांति धाम में कहो या परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन होने से विक्रम विनाश होते हैं, राइट। विक्रम विनाश की विधि क्या है, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन हो जाओ। उसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर किसे, शरीर का जो भान है ना, अशरीरी मन, देह से परे, देह तो है पर देह से परे चला गया हूं, अशरीरी बन के, तो जो शरीर के कारण, जो शरीर के कारण, जो शरीर शरीर ना, शरीर का मैपन मेरापन, शरीर के संबंध संपर्क, देखे पदार्थ, उससे जो उत्पन्न होते ना, जो संस्कार बन जाते ना, जो मैपन मेरापन खत्म हो जाता है अशरीर स्थिति से, और निराकारी, जब जब हम नयापन मेरापन का त्याग कर लेते हैं तो निराकारी स्थिति बन जाती है। जब निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड होते हैं तो हमारे विक्रम विनाश, विक्रम और पापक्रम भस्म होते हैं, तब हम निर्विकारी बनते हैं, राइट। अशरीर स्थिति से मैंपन मेरापन खत्म होता है, तो इसलिए कहा जाता है निराकारी और शरीर में फर्क है, उसकी गहराई में बाद में जाएंगे, पर वो अशरीर स्थिति निरंतर कैसे रहे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते, कर्म योगी बनकर के हम रहें, क्योंकि अगर हमें योग का प्रयोग करना है तो हमें निरंतर योगी बनना पड़े। सुबह शाम योग लगाने से खाली, अमृत वेला कर लेने से, शाम का योग करने से नहीं बात बनने वाली। कल का वरदान था ना कि अमृत वेला पावरफुल योग हो, उससे हमारा साधन एक ट्रिगर मिल जाता है, हमको बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि तो फिर उसको बार बार रिवाइज और रियलाइज करना पड़े। कल की मुरली में था ना कि जो बोझ और बंधन है उसको दिल से रिवाइज और रियलाइज करो, बोझ क्या है और लवर लाइट क्या है, अब उसकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले जो स्थिति चाहिए हम सबको, अगर ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, ब्रह्मा बाबा के आठ कदम देखें, तो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था अंतर्मुखता। तो अगर हमें सचमुच हम चाहते हैं कि हम भी 108 की माला के दाने बन जाएं, बनना है 108 की माला में, कौन कौन आना चाहता है, हाथ उठाओ, पूछा हाथ उठाओ, 108 की माला में जो आना चाहते हैं सभी आ सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा था आप पुरुषार्थ करो, मैं क्या करूंगा, 108 की माला में लड़ियां लगा दूंगा, तो जो भी पुरुषार्थ करे वो आ सकता है ना। तो बाबा ने कहा था कि अंतर्मुखता माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा रियलाइज करते हुए महसूस करते हुए परमधाम निवासी परमात्मा जो पावर हाउस है सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का, मैं आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं और मैं आत्मा शरीर को चलाती हूं और परमात्मा जो है सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, बैटरी चार्ज करते हैं, तो अंतर्मुखता का मतलब ही क्या है, अंदर में जो मैं आत्मा हूं परमात्मा से कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, बार बार रिवाइज होना चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर सोच रही हूं, कुछ भी सोचना है बाबा से कंबाइंड होकर सोचो, बाबा से कंबाइंड होकर निर्णय करो, बाबा से कंबाइंड होकर क्या करो, देखो, कुछ भी देखना है तो अपने शरीर को देखना, किसी और को भी देखना है तो बाबा से कंबाइंड होकर देखो, पढ़ना है तो बाबा से कंबाइंड होकर, सुनना है तो बाबा से कंबाइंड होकर सुनो, कुछ बोलना है तो बाबा से कंबाइंड होकर बोलो, कुछ खाना है तो बाबा से कंबाइंड होकर खाना, कुछ भी पीना है बाबा से कंबाइंड होकर पियो, इवन श्वास भी लेना बाबा से निरंतर याद रखो कि बाबा से कंबाइंड होकर श्वास लेना, हाथों से कर्म करना है बाबा से कंबाइंड होकर, पैरों से चलना है बाबा से कर्म, कुछ भी कर्म करना है देह से, किसी से व्यवहार करना है बाबा से कंबाइंड होकर। इसका बहुत गहरा अटेंशन चाहिए, बहुत मुश्किल काम है ये, आप करके देखो। तो पहला पुरुषार्थ यही है, अगर विक्रम विनाश करने सचमुच में करने हैं, एंड वी आर सीरियस अबाउट इट, बाबा ने कहा था ना बाप से करंट खींचने के लिए क्या चाहिए, धैर्यता चाहिए, पहले सत्य की समझ चाहिए, फिर धैर्यता चाहिए, फिर गंभीरता चाहिए और फिर सहनशीलता चाहिए, चार बातें चाहिए। पहले सत्य की समझ में ना ज्ञान की गहराई अपने अंदर आनी चाहिए, एबीसीडी की गहराई आनी चाहिए, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, इसकी गहराई में उतर जाओ, इसकी गुहियाता में चले जाओ, मुरली के एक पॉइंट की गहराई में जाना बहुत जरूरी। फिर क्या चाहिए, धैर्य पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमने 63 जन्मों के पाप कर्म है, एक के बाद एक फाइलें खुलती जाएंगी, खत्म नहीं होंगे, फाइलें खुलती जाएंगी और आप भरसम करते जाओगे, डिलीट करते जाओ, जैसे पाप, जैसे ना व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप में कितने मैसेज आते हैं या SMS कितने आते हैं, डिलीट एक साथ डिलीट नहीं होते हैं, इसमें तो डिलीट हो जाते हैं मोबाइल में, तो उसमें हर SMS खोलना पड़ता है, फिर डिलीट करो, फिर खोलो, फिर डिलीट करो, फिर खोलो, फिर डिलीट करो, वो फाइलें खुलती जाती हैं, सामने आती जाती हैं, कि ये पापक्रम सामने आते हैं, कि ये विक्रम सामने आते हैं, फिर वो उसको डिलीट करना पड़ता है। तो रिटर्न जर्नी है ना, तो एक के बाद तो धीरेता रखनी होती है, सीरियस होके गंभीर होके करना पड़ता है, कैजुअल होके नहीं, बस कर लिया थोड़ा, बाबा को याद कर लिया थोड़ा, मुरली पढ़ ली एक बार, चलते फिरते मुरली सुन ली, पढ़ ली, बस हो गया, ऐसा नहीं है। मुरली होमवर्क है, मुरली सुनने के लिए नहीं, बनने के लिए है, सुबह सुनी शाम तक वो मेरे जीवन में आ जाए। जैसे आज बाबा ने सुबह कहा ना, क्या कहा, नाजुकपना खत्म कर दे, आज शाम तक नाजुकपना खत्म हो जाए, रूसना रोना बंद हो जाए, देह विमान खत्म हो जाए, मीठा मीठा बोलना शुरू कर दे, मीठा स्वभाव बन जाए। आज का वरदान था, वरदान के अनुसार जीवन बन जाए, स्लोगन था वो बन जाए। आज का अव्यक्त इशारा था, अव्यक्त लाइट और अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मा की लाइट और स्थिति लाइट, शाम तक बन जाए, बन जाएगी रात तक 10 बजे तक, आज का होमवर्क है ये, है ना। तो ये सत्य की समझ के बाबा ने मुझे पढ़ा, होमवर्क दिया है मुझे आज करना है, फिर धैर्यता, फिर गंभीरता, सीरियस होकर करना है, कि कल की फिर दोबारा होमवर्क मिल जाएगा, कल की मुरली फिर मिल जाएगी। अभी संडे की मुरली थी कल, रात तक हम करते रहे, फिर रात को जूम पे क्लास थी तो देखा कितना परसेंट हमने किया, फिर रोज चेक भी करना होता है शाम को, है ना। तो ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति चाहिए ना, तब जाके बात बनेगी, तो बनेगी नहीं। तो अंतर्मुखी होने का मतलब यही है कि अंदर में जाओ, बाह्यमुखी नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वो भाई क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, यज्ञ में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, दीदी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस अंदर जाके बाबा से कंबाइंड होके हर कर्म करना है। बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी थी, तो दादी के पास रोज जाना होता था, दादी ने कहा हुआ था मुरली के बाद मुझे मिलना है जरूर आपको, 5 मिनट तो आके मिलना ही है रोज। तो दादी कभी कभी कुछ बताती थी, कैसे कर्मों से सिखाती थी, पर कुछ कभी कभी कुछ अकेले में होती थी, कुछ ना कुछ मुझसे पूछती थी, तो चेक करती थी इसको कितना पता है। तो दादी ने एक दिन कहा था मुझे कि आप गुप्ता जी, आप पता है इंचार्ज किसे कहते हैं। मैंने कहा दादी इंचार्ज मतलब हेड HOD, उसमें मधुबन में 48 डिपार्टमेंट थे, तो हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता है। नहीं नहीं वो इंचार्ज नहीं, रियल मीनिंग क्या है इंचार्ज का, दादी ने कहा, मैंने कहा दादी आप बताओ, तो दादी कहते इंचार्ज वो जो इन रह के मैं ना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, अंदर रह के अपने आप को चार्ज, आत्मा रूपी बैटरी को, परमात्मा पावर हाउस जो है उससे हमेशा बैटरी चार्ज करता रहे, और चार्ज करके अपने मन को बुद्धि को संस्कारों को भी उससे पोषित करता रहे, अपने मन को भी पोषित करे और अपनी आंखों को भी सातों एनर्जी से भरपूर करता रहे, कान को नाक को मुख को त्वचा को पूरे शरीर के आठों अंगों को भरपूर करे, और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, जो भी उसके डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट जो लोग हैं, जो भाई बहने हैं, नहीं तो कम से कम आप अपने तो इंचार्ज हो ना। मैंने कहा दादी इसका डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या करे, कहती आप अपने तो इंचार्ज हो, आपके पास अपनी बुद्धि मन संस्कार है, अपने पांचों कर्मेंद्रियां हैं, आपके शरीर के आठों अंग हैं, उनको तो चार्ज करो, आप उसके इंचार्ज हो ना, बॉडी के भी तो इंचार्ज हो, हर अंग के, हार्ट के भी तो इंचार्ज हो, फेफड़ों के भी तो इंचार्ज हो, लीवर के भी तो इंचार्ज हो, पेट के भी तो इंचार्ज हो, घुटनों पैरों के भी तो इंचार्ज हो, हाथों के भी तो इंचार्ज हो, आंखों के भी तो इंचार्ज हो, मेरी आंख कहते हैं, मेरी नाक मेरी टैंग मेरी पैर मेरा हाथ मेरा हार्ट मेरा दिल मेरा पेट है, कहते हैं ना, उसको चार्ज करो, सातों एनर्जी से चार्ज करो। तो अंतर्मुखता और इंचार्ज एक ही बात है। तो पहला कदम तो यही है, अगर हमें विक्रम विनाश करने हैं तो, पाप कर्म भस्म करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तो अंतर्मुखता का रस आने लगेगा। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, जब बाबा से कंबाइंड रहने लगते हैं ना, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड रखे हर कर्म करने लगते हैं तो अंदर तो क्या होता है, अंदर का सुख मिलने लगता है ना, पवित्रता सत्य की समझ आने लगती है, ड्रामा की समझ आने लगती है, पवित्रता शांति है ना, सच्चा स्नेह अतिंद्रिय सुख आनंद और थोड़ा 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 महसूस होने लगता है, आप थोड़ा सा अटैच हो जाते हो बाहर से, अंदर ही रहने लगते हो, तो अंदर का सुख आया तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना बेहद, एक होता लिमिटेड, बेहद माना सारे विश्व से, वैराग्य माना ना वैर ना राग, ना किसी से वैर दुश्मनी ना किसी से अटैचमेंट, वैराग्य राइट, राग भी नहीं और वैर भी किसी से नहीं, बेहद का सारे विश्व में किसी भी देहधारी से किसी वस्तु से ना राग है अटैचमेंट है ना उससे वैर है, ऐसी स्थिति आने लगती है। ब्रह्मा बाबा का तो ये प्रैक्टिकल था, ब्रह्मा बाबा ने जब, बाबा जब कहते हैं 1928 में दादी बताती है, दादी निर्मल शांता पुट्टू दादी भी हमारे पास 3 साल रही थी हॉस्पिटल में, तो रोज उनसे आधा घंटा बैठते थे हम शाम को 5 बजे के बाद, तो दादी बताती बाबा कैसे 1928 से अंतर्मुखी हो गए थे, ज्यादा बोलना ही बंद कर, दुनिया की बातें सब में इंटरेस्ट कम हो गया था बाबा का, जब 52 साल के थे बाबा तभी, तो बाबा पहले से तैयारी कर रहे थे ना, जब बाबा दरबार देखते थे राजाओं के दरबार में जाते देखते कैसे राजा अपने मंत्रियों से बातचीत करते हैं, तो 32 में बाबा ने फिर अपनी दरबार लगानी शुरू कर दी, मन बुद्धि संस्कार की, पांचों कर्मेंद्रियों की, आठों अंगों की, तो बाबा उनसे हालचाल पूछते थे मन से बुद्धि से संस्कारों से पांचों कर्मेंद्रियों से है ना, तो हालचाल पूछते थे, दरबार लगानी शुरू कर दी। 34 में बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ बनारस में, तो बाबा ने देखा सब दुनिया जा रही है, सब जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, सब धरती सब करोड़ लोग मर रहे हैं, तो बाबा को लगा दुनिया जा रही है, तो बाबा को बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई राइट, अंतर्मुखी का सुख तो आने लगा था, पर और हम तो बाबा ने तो साक्षात करके, हम क्या कर रहे हैं, हम तो रोज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, ताश के पत्ते के माफिक बिल्डिंग खत्म हो रही नहीं हो रही, बम लगता है एकदम नीचे सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, मिसाइल गिरता है बम सारी, तो प्रैक्टिकल हो रहा ना हमारे सामने, तो एटॉमिक बम तैयार है ना बिल्कुल, हमारी कमजोरी है कि बम बटन नहीं दबा पा रहे है ना, अगर हम तैयार हो जाए तो बटन एकदम दबा दें है ना, बच्चों की बाबा कहते हैं बच्चों की साधनाओं में कमी है जिसके कारण विनाश वाले क्या नहीं कर पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, वो तो तैयार है काम करने के लिए, हम तैयार नहीं हो रहे है ना राइट, हम तैयार हो जाए तो बाबा उनका हाथ पकड़ के रखे हुए हैं, अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं है ना? पर बाबा भी कब तक हाथ पकड़ेगा, अमेरिका भी तैयार है, रशिया भी तैयार है, सभी देश तैयार है ना, ब्रिटेन भी जिनके पास एटॉमिक वेपन सब तैयार है ना, ब्रिटेन फ्रांस जिनके पास भी है सब तैयार है, चाइना भी तैयार है, पर ऐसी धरती तो 20 बार खत्म कर सकते हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगी। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी ना तो क्या होगा, तब अनासक्त वृत्ति आने लगती है। अनासक्त माना आसक्ति खत्म हो जाएगी, मैं जापान चला जाऊं, मैं दुबई घुमाऊं, मैं वहां चला जाऊं, वो देखाऊं, वो देख लूं, उधर चला जाऊं, यूएसए में चला जाऊं, लंदन में चला जाऊं, वहां चला जाऊं, आज ये खा लूं, आज ये पी लूं, आज गुलाब जामुन खा लूं, आज बर्फी खा लूं, समोसा खा लूं, है ना, आज आइसक्रीम खाऊं, है ना, नहीं होती है आसक्ति। ब्रह्मा भोजन में ये बनना चाहिए, छोले भटूरे बनने चाहिए, बहुत दिन से नहीं खाए, आसक्ति होती ना, फिर आसक्ति नहीं रहेगी, बस छोटा थोड़ा सा खा, जैसे बाबा थे ना, थोड़ा सा खाया बस अपना। जितना जितना स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है ना, तो हमें फिजिकल एनर्जी कम लेने की आवश्यकता पड़ती है, कम भोजन में हमारा पेट भर जाता है। निर्मल शांता दादी थी, एक पतली सी चपाती लेती थी, पतली सी चपाती होती थी, कभी चलाता आधा आधी मुझे खिला देती थी उसमें से, और बाकी आधी में दादी ने, मैंने, आपने मुझे खिला दी, एक और ले लो ना, दानी लेगी दादी, छोटी सी, कितनी कैलोरी खाएंगे, मुश्किल से, मैं सोचता साइंस के हिसाब से कम 1100 कैलोरी चाहिए होती है, और दादियां कितनी खाएंगी, 400 कैलोरी 500 कैलोरी एक दिन में, और काम इतना करेंगी, इतने लोगों से मिलेंगी, और सबको दृष्टि, पावरफुल दृष्टि, तो ये जैसे माइलेज होती है ना गाड़ी की, एक गाड़ी होती है जो एक एक लीटर में 5 किलोमीटर चलती है, और एक गाड़ी होती है 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, तो जितना जितना आत्मिक एनर्जी बढ़ेगी ना, उतना कम खाने की आवश्यकता पड़ेगी, और कम खा के हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी बन जाती है, राइट। तो अनासक्त वृत्ति होती जाती है, आसक्ति खत्म, दे के संबंध संपर्क, दे के पदार्थों से, दे के सब चीजों से आसक्ति खत्म होती है। जब आसक्ति खत्म होती तब तो वो उपराम वृत्ति आती है, उपराम माना अब मन बुद्धि ऊपर जाने लगती है, ये तैयारी है, अशरीर कैसे बनेंगे, है ना, जब उपराम वृत्ति होने लगती है तो क्या होने लगता है, फिर हमारी एकांत, फिर एक के अंत में जाने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा एक के अंत में चले जाते थे, बाबा चले गए, कभी कश्मीर चले गए, कभी बनारस चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं एकांत में जाके बैठे, बाबा बैठे रहते थे एकांत में, दादी बताती बाबा एकांत में बैठे रहेंगे, बस कमरे में बैठे, अपने एकांत में बैठे, बाहर बैठे एकांत, कहीं चले गए एकांत में जाके बैठ गए, बस खोए हुए हैं बाबा, है ना। तो दो चीजें बहुत जरूरी, अंतर्मुखता और बेहद की वैराग्य वृद्धि। अभी समाज संपूर्ण स्थिति क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जब अंतर्मुखता बेहद की वैराग्य, तब जाके हमारा शिव बाबा, तब हमारा ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्रह्म जन्म तब हमारा होता है, नहीं तो कहने को ऐसे हम ब्राह्मण बन जाते हैं, कि दिव्य ब्राह्मण जन्म ना सचमुच में फील होता है, मेरा नया जन्म है, मरजीवा जन्म है, हम इस दुनिया से मर गए, देव और देह की दुनिया से मर गए, ये दिव्य ब्राह्मण जन्म, शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। जैसे नया जन्म होता है, ये अंदर से स्मृति इमर्ज होती है बार बार, तो मेरे दिल में कौन आ जाता है, पहले दिल में क्या था, दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस, पहले मेरे दिल में क्या, मनुष्यों के दिल में क्या है, देह भान, ये अपनी देह का भान रहता है, देह अभिमान, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे पे इतना पैर, तो देह अभिमान रहता है, देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, अपने संबंधी, वो अंदर भरे, दोस्त यार दोस्त भरे रहते हैं, कहां पे, दिल में भरे रहते हैं, चेतना में भरे रहते, चेतना माना चैतन्य में जो हमें याद रहता है, चेतना कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियस में, दिल, उसे दिल कहते हैं, आत्मा के दिल, बुद्धि का बिल्कुल सेंट्रल एस्पेक्ट है, उसमें यही भरा रहता है, और फिर देह विमान के पदार्थ, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद भरे रहता है, आपकी कार है, बैंक बैलेंस यहां भरा रहता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, आपका भी दिल भी ऊपर नीचे होती है, नहीं होता है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती है, जो सोना जिन्होंने खरीद रखा है, सोना ऊपर नीचे हुआ तो उसकी भी दिल ऊपर नीचे होती है, नहीं होती, ये दिल ऊपर नीचे होती है, ये फिजिकल दिल है, ये आत्मा के दिल यहां है। तो जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है तो क्या, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो माँ उसके दिल में क्या आ जाती है, उसकी माँ आ जाती है, क्योंकि माँ उसकी पालना करती है, उसके दिल में माँ ही आ जाती है। तो ऐसे ही जब दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है तो हमारे दिल में से ऑटोमेटिक दिव्य ब्राह्मण जन्म, नया जन्म हुआ ना, तो पुराना देवान खत्म, देवीमान खत्म, संबंध संपर्क खत्म, पदार्थ खत्म, और देवीमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 विकारों के वशों के जो 10 वश में होकर कर्म करते हैं, उसे 10 आदतें पड़ती हैं, आसुरी आदतें, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई ना, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, निश्चय विश्वास पर शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, 10 आसुरी आदतें, क्योंकि 10-10 बच्चे और भी आगे और 10-10 और उनके और भी मतलब आदतें हैं उनके कारण, पर मुख्य 10 हैं, तो अंदर दिल में भरी रहती है। और जैसे जन्म होता है तो हमें दिल में कौन आ गया? शिव बाबा, ज्ञान का सागर, सत्य की समझ का सागर, ज्ञान में सत्य की समझ, समझ ज्ञान में समझ, सत्य की समझ, सत्य की समझ का सागर दिल में आ गया, पवित्रता का सागर दिल में आ गया, शांति का सागर दिल में आ गया, सत्य निस्वार्थ स्नेह का सागर दिल में आ गया, अतिंद्रिय सुख का सागर, उसको अंदर अंदर रिवाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, मेरे दिल में कौन है? सच्चा ब्राह्मण इसके दिल में बाबा है, इसको बोलते हैं सच्ची दिल। जैसे ही बाबा दिल में आता है दिल सच्ची हो जाती है, सच्ची दिल में, जिस दिल में बाबा किसी कुछ और है नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसे कहते सच्ची दिल। दिल में बाबा जरा भी देवान देवमान नहीं, बस बाबा है, ज्ञान का सागर है। क्या अंदर से मुझे क्या बता रहा है? बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, मुझ परमात्मा की संतान हो, मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको सरल संबंधों की पालना और प्यार दे रहा हूं, और शिष्य रूपी ड्रामा में अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या अभी भी जो भी हो रहा है तुम्हारे अपने किए कर्मों का फल है। तुम्हें दुख मिला, धोखा मिला या सुख मिला, किसी ने गालियां दी, इंसल्ट किया, किसी ने पैसा लूट लिया आपका, आपके अपने किए कर्मों का फल है। आपको अपमाना था, आज भी था मुरली में, मान अपमान, दुख सुख, निंदा स्तुति सब सहन करना है, आपके अपने किए कर्मों का फल है। अब क्या करो? अब दिल में मुझे बिठा के और अब मेरी श्रीमत पे रह करके अपने को आत्मा निश्चय कहकर मुझे याद करो, मेरी मेरे मेरे से कंबाइंड होकर हर काम करो, तो क्या होगा? तुम्हारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, और भस्म होते हो तुम ब्राह्मण से क्या बन जाओगे? फरिश्ता, सो देवता, और फिर मास्टर देवता बनने के बाद भी मास्टर बीज रूप बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीज रूप हूं, तो बाबा के साथ जाना जाने वाले कौन होंगे? जो बीज रूप के साथ मास्टर बीज रूप जाएंगे, साथी बन के कौन जाएगा? फरिश्ता बन के बाबा के साथ नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे? मास्टर बीज रूप बन के जाएंगे, फिर मास्टर बीज रूप बन, मास्टर बीज रूप बन के फिर मेरे साथ में तुम्हें अपने वापिस साथ में परमधाम घर में ले जाऊंगा, और वहां से तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सुखधाम में आ जाएंगे। बता, अनादि ज्योति बिंदु से आदि देवी देवता स्वरूप परमधाम में जाएंगे मेरे साथ, और फिर सुखधाम में आएंगे। तो ये बाबा हमको सागर है, इस बात का ABCD का सागर है, तो महसूस करो बाबा को दिल में, दिल में बाबा को रिवाइज, मेरे दिल में कौन बैठा है? सागर बैठा है, इसका पावर हाउस बैठा हुआ है, पवित्रता का पावर हाउस बैठा हुआ है, शांति का पावर हाउस बैठा हुआ है, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह का पावर हाउस बैठा हुआ है, शांति में आकर वर्तमान में रहना, पास को फुल स्टॉप लगा के तो अपने सत्य में टिके, परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होकर रहना, उसका सागर बैठा है। बाबा तो कोई बाबा को विचार चलता ही नहीं, पास का भविष्य का चलता ही नहीं, बाबा तो हमेशा वर्तमान में रहता है। प्यार मन, प्यार का सागर माना क्या? सबको एक्सेप्ट करता है, कोई बीके है, नॉन बीके है, चलता ठीक से ज्ञान, बीके है ज्ञान में ठीक से चलता नहीं है, मुरली सुनता नहीं है, अमृत वाला ढंग से करता नहीं है, तो भी बाबा उसकी पालना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आतंकवादी है, डाकू चोर है, उसकी भी बराबर पालना कर रहा है, उसका भावा पानी बुद्धि भी दे रहा है, बाबा से कुछ कहता नहीं है, चोर डाकू को कहता है चोर तुम डाकू की डाका क्यों डाल रहे हो? नहीं, देखो जब दुर्योधन और दुशासन कौरवों की सभा में जब चीर हरण कर रहे द्रौपदी का, तो उसने कृष्ण को याद किया ना, कहते ना द्रौपदी ने, तो क्या किया द्रौपदी को उसने क्या दिया? साड़ियां दी, 21 साड़ियां, कहते ना 21 साड़ियां दी, किंतु क्या दुर्योधन कुछ कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दुशासन कुछ कहा नहीं, उसके कर्म उसके साथ, उसके कर्म उसके साथ, भगवान कभी कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है। तुम जो कर्म करो, जैसा कर्म करो, तुमको द्रौपदी ने याद किया, उसको मदद मिल गई, दुर्योधन दुशासन कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो हमें देखना चाहिए कि भगवान कभी किसी कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है। तो स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, वो सबको एक्सेप्ट, दुनिया में हर आत्मा को कैसी भी हो उसको भी सब कुछ दे रहा है, बुद्धि भी दे रहा है, उसके कर्म का फल उसको मिलने वाला है, राइट? तो प्यार का सागर है, अतिंद्रिय सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सत्य को परखने की शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, दिव्य बुद्धि का सागर है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार मिला के ऊपर बैठा हुआ है, समेटने की शक्ति का सागर है, समेट के ऊपर बैठा हुआ है, अशरीर स्थिति का सागर है, निराकारी स्थिति का सागर है, बीज रूप स्थिति का सागर है, वो सहन करने की शक्ति का सागर, सब कुछ सहन करता है। कितने लोग मरते हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, समाने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, सहयोग करने की शक्ति का सागर है, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर है, हीलिंग एनर्जी का सागर है, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि का सागर है। वो कहां बैठा है? मेरे दिल में बैठा है। बाबा कहते हैं ना, बच्चों को दिलाराम को क्या पसंद है? बच्चों की दिल ही पसंद है। मेरे दिल में कौन रहता है? कौन रहता है मेरे दिल में, बोलो ना। आपके दिल में कौन रहता है? दिलाराम रहता है ना। और हम कहां रहते हैं? हम कहां रहते हैं? दिलाराम के दिल में रहते हैं। हमको बाबा के दिल पसंद है, बाबा को हमारे दिल पसंद है, सच्चे ब्राह्मणों के दिल पसंद है। तो दिल में बाबा को रिवाइज रियलाइज करते जाओ। तो जैसे दिल में रिवाइज और रियलाइज ना, सच्चे दिल से महसूस करना, बार बार स्मृति इमर्ज करो। अभी तक हम क्या इमर्ज करते थे हमारे, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो माँ हूं दो बच्चों की, मैं तो चार बच्चों का बाप हूं, मैं तो मेरे को ये करना है, मेरे को फैक्ट्री संभालनी है, मेरे को अपनी ये संभालना है, ये संभालना है। ये नहीं, बस दिल में हम कौन है? बाबा है ना। सारा बोझ बंधन उसको दे दिया ना, हल्के हो जाओ। बाबा को दिल में रिवाइज रिलाइज करते जाओ तो क्या होगा, तब दिव्य दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। दिल में बाबा है तो नेत्र खुलता है। कहते हैं पता, जैसे बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा हमको दो गिफ्ट देता है, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी दो गिफ्ट हमको मिल जाती है। किंतु कब कब मिलती है? जब दिल में बाबा है तो मिलती है, तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता नहीं है, थोड़ा भी देह अभिमान है, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसका ये हूं, मैं इसका, मेरे नीचे इतने भाई बहने काम करते हैं, नहीं थोड़ा भी, मैं इवन ये टीचर का भान भी आया ना तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं बाबा का बच्चा, बाबा है करण करावाना, सब कुछ करण करावाना, ये भी नहीं होना चाहिए। हम तो बाबा के बच्चे हैं, बस बाबा जैसे कराए। तो ऐसी फीलिंग निरंतर है ना, तब तीसरी नेत्र खुलता है। और जब दिव्य नेत्र खुलता है ना, तो मुरली का मनन चिंतन शुरू होता है। मुरली अंदर से, मन ही मन में मुरली रिवाइज और रियलाइज होती है, रिवाइज होती है मुरली, जैसे आज की मुरली ना, तब मुरली अंदर बजनी शुरू होती है। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, है ना। अंदर से मुरली बार 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 बाबा की बातें याद आएंगी, आज बाबा ने कहा था, बच्चे ये नाजुकपना भी देह अभिमान है, रूसना रोना है सब आसुरी संस्कार, तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, है ना। दुख दुख सुख माना पान सब सहन करना, अंदर बजेगी अंदर से मुरली, तब तब तीसरा नेत्र से, तीसरा नेत्र खुला होगा, दिव्य बुद्धि रूपी दिव्य दृष्टि रूपी तीसरा नेत्र खुला होता ना, तब दिल में बाबा है तो बाबा की मुरली याद आएगी। जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है, उसने जो कहा था वो बार उसकी बातें याद आती है। जैसे एक माँ को, किसी दिल में माँ रहती है ना, माँ मर गई तो भी माँ की बातें, माँ भी याद आएगी, माँ की कई बातें भी याद आती है। ऐसे ही मेरे दिल में बाबा तो बाबा की मुरली याद आती है। पर वो ज्ञान का तीसरा नेत्र से समझ आती है कि हाँ ये बात ये ऐसी है, दिव्य दृष्टि से समझ आती है। दिव्य दृष्टि, बाबा ने ये कहा ना, ये मुझे आज करना ही है, एक दूसरे की खामी नहीं देखनी है, तब सर्विस में ढीलापन आ जाएगा, उसकी खामी मेरे अंदर आ जाएगी, मुझे किसी खामी नहीं, दोष दर्शन नहीं, खामी माना दोष दर्शन नहीं करना है, गुण दर्शन करना है, सबके गुण देखने हैं। तो ऐसे ऐसे सारी एक एक मुरली की एक लाइन अंदर बजेगी बजेगी बजेगी, देहीमानी, इसको बोलते देहीमानी स्थिति। मुरली को अंदर से गहराई से रिवाइज करना और रियलाइज करना, रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा ने मुझे कहा। जब रियलाइज करोगे ना तो सचमुच हाँ लगेगा, हाँ रियलाइज माना सच्चे दिल महसूस होगा, मेरे अंदर कमी है, सचमुच बाबा ने कहा ना मेरे अंदर कमी है, मेरे नाजुक नेचर है, मेरे को भावुक हो जाता हूं, मेरे को आंसू निकलने लगते हैं, दिल भारी हो जाती है, फीलिंग आने लगती है, मेरे अंदर ये है, मैं उससे खर्चकर रह नहीं सकता हूं, उसके काम नहीं कर सकता हूं, उसको मैं अवॉइड करता हूं, उससे मेरी ईर्ष्या द्वेष है, फील होएगा, अपनी कमी कमजोरी भी रियलाइज होगी ना। जब रियलाइज करें मुझे ये बनना है सच्चे दिल से महसूस, बाबा ने कहा ऐसे बनना बच्चे, तुम्हें तो मीठा बनना है, मीठे स्वभाव वाला बनना है, सबसे मिलजुल कर रहना, रास रास सबसे तुम्हारी दास मिलनी चाहिए, संस्कारों की दास मिलनी चाहिए, महारास होनी चाहिए, तो महसूस होगा ना, तो रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करना। तो बाबा के एक महावाक्य को, वरदान को, आज का वरदान था, आज का स्लोगन था, तो रिवाइज रियलाइज होने लगता है ना। तो कैसे बाबा ने कहा, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भाव,
तो अंदर से महसूस होगा, हाँ बाबा ने मुझे कहा मुझे महावीर बनना है, कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भयानक परिस्थिति आए, मुझे अशरीर मुझे कैसा रहना है, सदा संतोष की अनुभूति में रहना है, सदा मुझे महावीर बनना है, हिलना नहीं है। महावीर माना जो कभी भी किसी भी माया के विकार से हिले नहीं, कितना भी बड़ा वार हो जाए, कितनी परिस्थिति आ जाए, कितने माया के वार हो, हिले नहीं, उसको बोलते हैं महावीर। तो ऐसी स्थिति बन जाए तो तब मुरली अंदर चलने लगे, इसको बोलते देही मारी स्थिति। ड्रामा की समझ आने लगती है, ये व्यक्ति मुझे रोज तंग करता है, रोज मैं इसको मैं कुछ नहीं कहता हूं, रोज मेरे समय हर समय मुझे तंग करता है, हर समय विषाद वेश से भरा रहता है मेरे लिए, हर समय कोशिश करता है गिराए इसको, कैसे गिराए कैसे गिराए, क्यों मैं कितना मर्जी करूं वो तो भी खुश नहीं होते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ पिछले जन्म में ऐसा किया हुआ है, इसलिए समझ अंदर समझ आती नहीं मुझे सहनकर के समाना है। यही पाप कर्म भस्म करने की विधि है, विक्रम भस्म सहन करके समाना ही, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति वो कैसे आती है, जब अशरीर बन के परमधाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड होते हैं। तो पहले तो ये समझ आए ना, ABCD फुल स्टॉप लगना, जो बकल की मुली थी ना, बाप समान बनने के लिए क्या, तीन बिंदी लगाओ और दुआ दो दुआ लो, तब फुल स्टॉप लगाना शुरू होता है, तब मैं आत्मा बिंदी मेरा बाप बिंदी और जो बीत गया, जिसने जो मर्जी कहा जो मर्जी किया, अपमान किया मुझे सम्मान दिया, दुख दिया सुख दिया, कुछ भी मिला, निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी जो भी कुछ हो रहा है, फुल स्टॉप। तब फुल स्टॉप लगा के अपने को बिंदी समझ के बिंदी बाप से जब कमाइंड दिल में बाबा को बिठा के फिर दुआएं निकलती, दुआएं माना क्या, बाबा की याद में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, वो दुआएं निकलती हैं, और दुआएं जब जाती है ना बाबा के पास जाती हैं, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पे कर रहा हूं, मैं बाबा के प्रति सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना कर रहा हूं, बाबा की श्रीमत पे चल रहा हूं, बाबा तक वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, फिर सैटेलाइट जैसे मैं मोबाइल करता हूं ना, यहां से मोबाइल में किसी को किया, आप ही मानो सामने बैठे हैं, मैं आपको मोबाइल करता हूं, तो मोबाइल सीधा मेरा आपसे आपके पास जा रहा है, नहीं कहां जाएगा, मैंने आपको फोन किया सीधा आपके पास जाएगा, नहीं यहां से टावर पे जाएगा, टावर से जयपुर जाएगा, और जयपुर से या बॉम्बे जाएगा जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, और वहां से फिर आएगा आपके इस टावर पे आएगा, उस टावर से फिर आपके पास आएगा। ऐसे ही जब हम बाबा को देते हैं ना, बाबा की याद में बाबा की मुरली को रिवाइज रियलाइज करते हैं ना, तो वो बार बार रिवाइज करते रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करते हैं, तो वो संकल्प भावना बन जाते हैं, और भावना से वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचते हैं, और बाबा से वाइब्रेशन पदम गुणा, बाबा कहते हैं जब सच्चे दिल की याद मेरे तक पहुंचती है तो मैं उसको पदम गुणा उसको भेजता हूं, तो पदम गुणा वो बाबा के पास क्या है, ज्ञान पवित्रता शांति का सागर है, वो उनसे शांति की किरणें पवित्रता खुशी आनंद सब मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आती है, और जिस आत्मा को और जिस आत्मा को आवश्यकता है उसको भी बाबा अपने आप दे देता है, मैं नहीं देता हूं डायरेक्ट, मैं भेज नहीं सकता आपके पास, किसके पास भेज नहीं सकता हूं मैं आपको दुआ दू दुआ लू नहीं हो सकता है, मैं बाबा को याद करता हूं आपको पहुंच जाती है, और फिर बाबा मुझे दुआ देता है, वो आत्मा तो मेरे को नहीं दुआ देगी, वो तो मेरा दुश्मन जैसा अपने को दुश्मन समझता है, मेरा दुश्मन समझती है, वो नहीं देगी, बाबा मुझे दुआ देता है, मैं बाबा को याद करता हूं तो बाबा से वो उनको बाबा दुआ मिल जाती है, उनको शांति प्यार मिल जाता है खुशी मिल जाती है, और बाबा फिर मुझको दुआ देता है। ऐसे दुआ देना और दुआ लेना जो 24 घंटे चलती रहती है, पर जिसने जिसको तीन बिंदी लगानी आई तभी दुआ, तभी तो बाप से मनवानेंगे ना, नहीं तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पवित्र तो इसके क्या हुआ, तो सारा ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं, तीसरा नेत्र खुला ना तो पवित्रता आ जाती, पवित्रता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर मैं अब हर संकल्प बोल कर्म करता हूं, संबंध संपर्क में व्यवहार में आता हूं, और फिर सामने वाले का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे चला जाता हूं, क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है, ब्रह्मचर्य तो अपना लिया किंतु काम क्रोध भी अपवित्रता है, लोभ मोह अहंकार भी अपवित्रता है, और फिर इससे पैदा होने वाले कौन आलस्य अलबेलापन भी अपवित्रता है, किसी के अवगुण देखना भी अपवित्रता है, बदला लेने की भावना भी अपवित्रता है, शक करना भी अपवित्रता है, अनुमान लगाना भी अपवित्रता है, चिंता करना भी अपवित्रता है, डरना भी अपवित्रता है, जल्दीबाजी करना भी अपवित्रता है, और दोष दर्श और ईर्षा द्वेष करना भी अपवित्रता है। पवित्रता के 7 लेवल होते हैं, उसके बाद ब्रह्मचारी आता है। ब्रह्मचारी में संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सपन में पवित्रता, सत्संग बस बाबा और मुरली, जैसे ब्रह्मा बाबा का था ना, बाबा और मुरली, दादियों का था बाबा और मुरली, बस और कुछ नहीं। सत्संग, भोजन शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुक्का शुद्ध सात्विक नहीं, सातों गुणों को बढ़ाने वाला है। बाबा की याद में अपना बाबा की याद में आंखों का भोजन भी होता है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी आंख का, ये भी भोजन है ना, कानों का भोजन, ये भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। फिर दैवी गुणों की धारणा, आसुरी अवगुण कोई भी ना हो, दैवी गुणों की धारणा। फिर हमारा कल्चर है पवित्रता, क्या है हमारा कल्चर, हमारा जो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, बुद्धि रूपी आंख परम धाम में लगे रहे, मन रूपी आंख सुख धाम में लगी रहे, और सभ्यता, 4 नियम 4 मर्यादाएं हमारी, तो ऐसे दैवी गुणों की धारणा होने लगती है। तो ये हमारे 4 नियम 4 मर्यादाएं, कल का वरदान था ना, मर्यादाएं और नियम, तो मर्यादाओं पर चलना आ जाता है और नियम, तो ये हमारे दैवी गुणों की धारणा होने लगती है। फिर पावरफुल अमृत वेला, मुरली, 7 दिन अटेंशन, और सोने के बाद सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना, तो ये इसको बोलते पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता आती है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा जैसा आचरण, तब सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है, फास्ट का फुल स्टॉप लग के अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड रह के हर काम करते, कर्मयोगी बन जाते हैं, इसको बोलते शांति। जब बाबा से कंबाइंड होकर काम करने लगते हैं तो दुनिया की हर आत्मा कोई कुछ भी करे, कितना भी मेरा अपमान करे या सुख दे या दुख दे, कुछ भी करे, उसके प्रति भी मेरे अंदर दुर्भावना पैदा नहीं होती। मैं कहता हूँ ठीक है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, जो मेरे पिछले जन्म में किया होगा वो मेरे पार्ट खुला, फाइल खुली, इसने मैं सत्सा किया, कोई बात नहीं, सहन करके संभाल लिया, और बस सबको एक्सेप्ट कर, सभी बावर पालना करना, गाली देने वाले की भी और महिमा करने, दोनों बराबर लगते हैं। इसको बोलते प्यार, स्नेह, सच्चा सच्चा जो बाबा का है ना, ऐसा जब ऐसा प्यार मिलता दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। जब हमारे अंदर सचमुच हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, सत्य की समझ, पवित्रता आ जाती है, शांति आ जाती है, प्रैक्टिकल शांति जब आती है, सबके प्रति स्नेह पैदा हो जाता है, सारे विश्व में सारे हर आत्मा के प्रति स्नेह, हर आत्मा को दिल से स्वीकार करना, उसके हर रोल को स्वीकार करना, उसकी पालना करना बराबर, ये नहीं मेरी महिमा करता इसकी ज्यादा पालना करूं, ये मेरे को सुख देता है इसकी ज्यादा पालना करूं, ये मेरे को गाली देता है इसकी मैं कम पालना करूं, इसको मैं कहूं भाग जाओ यहां से, मेरे से बात नहीं करूं, मैं तुमसे बात नहीं करूं, ये प्यार नहीं है। सबको बराबर करना जो ब्रह्मा बाबा करते थे, ऐसी पालना, मैं दादी में, बड़ी दादी में भी देखा ऐसा था, अभी और दादी में भी ऐसा ही था। तो ऐसी स्थिति जब हमारी होती है ना, सबके साथ बराबर समान व्यवहार करना, सबको प्यार की अनुभूति, मां की अनुभूति कराओ, तो तब बाबा की, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। जब तक सारी दुनिया के प्रति प्यार नहीं ना, तब तक दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव नहीं होती है। तब हम अपने सूक्ष्म, इस बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर माना मन भी हमारा सूक्ष्म बन जाता है, सूक्ष्म माना लाइट का बन जाता है, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति स्मृति लाइट, उसमें भी ज्ञान भर जाता है, पवित्रता भर जाती है, शांति भर जाती है, सच्चा स्नेह भर जाता है, तब वो लाइट सब सूक्ष्म बन, लाइट लाइट का सूक्ष्म शरीर हमें बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। ये मुरली को रिवाइज रियलाइज करने से बनता है, जितना मुरली को रिवाइज रियलाइज करते जाते ना, उतना हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है, हमारे संकल्प संकल्प भावना में कन्वर्ट हो रहे हैं, भावना से वृत्ति बन रही है, वृत्ति से दृष्टि वायुमंडल बन रहा है, और वो वही सूक्ष्म शरीर है, लाइट का सूक्ष्म शरीर। और जो नियम मर्यादाओं पर चल रहे हैं हम, वो हमारा संस्कार, हमारी ड्रेस बन जाती है सूक्ष्म शरीर की, चमकीली ड्रेस बन जाती है। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में मैं आत्मा, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती हूं। इसको हम विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, रियल में फील होता है बाबा की गोद में पहुंच गए, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं, पर ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि बाबा कहता आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ। बाबा बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ है, सागर है वो ज्ञान का, पवित्रता, शांति का, और बाबा की गोद में हम अपने सूक्ष्म शरीर गए, वहां फील होगा कि बाबा आपके समा गए, ज्ञान सागर में समा गए, अतिंद्रिय सुख के साथ, ऐसे बोलते हैं अतिंद्रिय सुख पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, ज्ञान के सागर में समा गए, पवित्रता के सागर, शांति के सागर में समा गए, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में समा गए, अतिंद्रिय सुख पाना था सो पालिया, काम क्या बाकी रहा, संतुष्टता आ गई, स्वयं से भी संतुष्ट हो गए, बाप से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट हो गए और ब्रह्मा से भी संतुष्ट हो गए। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति आ गई। इसको बोलते अतीन्द्रिय सुख। एक एक संबंध की अनुभूति अलग अलग होती है, समय नहीं है उसको, नहीं तो उसकी गहराई में जाते। माता का संबंध क्या होता है, बाप का संबंध क्या, टीचर का संबंध क्या, सतगुरु का संबंध क्या, कल ने सुना ना बाबा से, बाप टीचर सतगुरु, बंधु क्या, सखा क्या, साजन क्या, सर्जन क्या, बच्चा क्या, नौ मुख्य संबंध है ना, एक एक संबंध की अनुभूति। इसको बोलते अतीन्द्रिय सुख के झूले, भिन्न भिन्न संबंध के झूले बाबा के साथ झूलते रहो। जब सब इच्छाएं पूरी हो जाए ना, इच्छा मात्र में विद्या हो गए, बाबा कुछ और नहीं चाहिए बस, तब उसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं ये विधेय स्थिति। अब जो थी ना स्थिति, पवित्रता, शांति और सच्चा स्नेह सबके प्रति, ड्रामा को फुलस्टॉप लगा देना, पवित्रता, शांति और स्नेह, इसको बोलते हैं आत्ममानी स्थिति। अब आत्मा सचमुच में पवित्रता को महसूस कर रही है, पवित्रता का किरणें निकल रही हैं, शांति का वाइब्रेशन बन रहा है, सुख का, उसका स्नेह का वाइब्रेशन, प्यार के वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं। प्रैक्टिकल वो प्रभाव, चार एनर्जी का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, पवित्रता का, शांति का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव, इसको बोलते हैं आत्मा। मुझे रियल में फील हो रहा है मैं आत्मा हूं, देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, चलते फिरते आत्मस्थिति का अनुभव, तब जाके आत्मा स्थिति से फिर हम सूक्ष्म, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है, तब हम बाबा की गोद में, इसको बोलते विधेय स्थिति। अतीन्द्रिय सुख की स्थिति को विधेय स्थिति बोलते हैं। इसको बोलते स्वीट साइलेंस, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति, स्वीट साइलेंस। और जब सर्व संबंधों की अनुभूति कर लेते हो ना अतीन्द्रिय सुख, अब इच्छा नहीं देती, इच्छा मात्र विद्या, तो उससे बनती हमारी इससे क्या बनती है हमारी, इससे क्या बनता है, लवलीन अवस्था। आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है, तो लवलीन माना आनंद की स्थिति। अभी संकल्प क्या है, बस बाबा के प्यार, सागर नदी में, नदी सागर में समा के क्या बन गई, सागर बन गई, वो स्थिति सागर की स्थिति बन गई। अभी कोई संकल्प नहीं चल रहा है, आनंद में दो संकल्प हैं, मैं और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अतीन्द्रिय सुख में तीन संकल्प हैं, मैं आत्मा, बाबा मेरा, और बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो, तीन ही संकल्प हैं, सर्व संबंध बाबा के साथ। और जैसे ही हमने दो संकल्प हुए, दो से उसमें खो गए ना, तो एक तक पहुंच गए, एक माना बस बाबा रह गया। और जैसे ही बाबा हुआ ना, बस मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा परम धाम घर में पहुंच गए, अशरीरी आत्मा परम धाम घर में, अशरीरी बाप से कंबाइंड, बस उसको फिर उसी स्थिति में संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। और ये क्या होता है, मैपन, मेरापन, शरीर का जो मैपन है ना, शरीर देह से जो मैपन मेरापन आता है ना, खत्म होने लगता है, शरीर बन के परम धाम फिर शरीर बाप से कमांड हो जाते हैं। ये बार बार इस स्थिति का अभ्यास, बैठे रहो एक मिनट दो मिनट, वैसे बहुत मुश्किल होता है बैठना, अभ्यास करना पड़ता है सारा दिन। जो स्थिति ना पहले मैंने बताया ना शुरुआत से, अंतर्मुखी बैर की वैराग्य वृत्ति, उससे दिव्य क्या हुआ, दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ, दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, उससे फिर मुरली समझ में आने लगती है, मुरली को रिवाइज रियलाइज करने लगते हैं, पवित्रता, सच्ची शांति, सच्चा स्नेह पैदा होता है, और उसे आत्मानी स्थिति कहते हैं, रिवाइज रियलाइज करने को देहीमानी स्थिति कहते हैं, और उससे फिर हमारे अंदर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट का चालू हो जाती है, सूक्ष्मता में सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा गोद में पहुंच गए, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, उसको स्वीट साइलेंस कहते हैं, उसे विदेह स्थिति कहते हैं, और जब इच्छा मात्र में विद्या लवलीन हो गए तो उसे डीप साइलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डीप साइलेंस, गहरी गहरी साइलेंस, बस खो गए, लवलीन हो गए, और उस स्थिति से फिर हम अशरीरी बन जाते हैं, अशरीरी बन गए, अभी बस संकल्प चलने बंद हो गए, मैं आत्मा, बस अशरीरी आत्मा, वहां संकल्प नहीं चल रहे, कई वहां बैठ के भी लोग संकल्प चलाते रहते हैं, वो अशरीर है ही नहीं, अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीर बाप से कम है, बस संकल्पों से परे चले गए, इसमें वो मेमोरी डिलीट, अशरीरी माना शरीर की सारी मेमोरी डिलीट होने लगती है, मैंपन मेरापन खत्म होने लगता है, देहभान देहभिमान देहभिमान के संबंध संपर्क पदार्थ, और जो इसमें ऊपर नीचे होता है ना उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, देह में ऊपर नीचे होता है ना, कितनी चीजें ऊपर नीचे होते हैं, बीमारियां ये वो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, देह के संबंधों में ऊपर नीचे होता है, देह के पदार्थों में ऊपर नीचे होता है, और वो फील नहीं होता, उसको सहन करके संभालने की शक्ति आ जाती है, उसको सामना करने की शक्ति आ जाती है, उसको सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, तो मैंपन मेरेपन का त्याग होना शुरू हो जाता है। अशरीर स्थिति से क्या होता है, इसका अभ्यास, इससे सारा दिन बीच बीच में अभ्यास, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आधा मिनट एक मिनट जब मौका लगा तब अश्वरी बन के परमधामगढ़ में चले, पर वो जब अंतर्मुखी होंगे बेहद की वैराग्यवृत्ति होगी तब, दिल सच्ची साफ होगी तब, दिल सच्ची होगी ना, तीसरा नेत्र खुला होगा, दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट एक्टिव होगी, सूक्ष्म वतन में रहेंगे, लवलीन अवस्था में रहेंगे, अत्यंत सुख में आनंद में रहेंगे, तब तो अश्वरी बनेंगे ना। मैं निरंतर हूं तभी तो होगा ना अश्वरी, ऐसे तो ना मैं अब मैं तो देहाभिमान में अश्वरी एकदम बन जाए, कैसे बने, बने नहीं सकते। नहीं, अश्वरी बनने का तरीका यह है, लगातार स्थिति चाहिए, बार बार स्थिति चाहिए, निरंतर कैसी चाहिए, विधेयी स्थिति चाहिए, देह में रहते विधेयी माना, सूक्ष्म वतन में रहो, सूक्ष्म वतन वासी रहो, अत्यंत सुख आनंद में रहो, फिर वहां से एक सेकंड में अश्वरी बन जाएंगे, अश्वरी बन के बाबा के पास रहेंगे तो मैं अपने मेरे अपन का त्याग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निराकारी स्थिति आ जाएगी। अब निराकारी आत्मा, देह से मतलब ही नहीं है, देह और देखते से मतलब ही नहीं, निराकारी आत्मा निराकार बाप से निराकारी वतन में कंबाइंड। अब क्या निर्विकारी स्थिति आने लगती है, निर्विकारी माना जब देह है ही नहीं तो क्या होगा, काम विकार भसम, क्रोध भसम, लोभ भसम, मोह भसम, अहंकार भसम, तब भसम होने लगते हैं, तब आलस्य खत्म होने लगता है, तब अलबिलापन खत्म होने लगता है, तब दोष दर्शन बंद होने लगता है। ये चेकिंग है, अगर मुझे किसी के अवगुण दिखाई देने, इसका मतलब अभी भी देहाभिमान है, किसी से किसी के प्रति मैं माफ नहीं कर पाता, अभी भी देहाभिमान है, चिंता रहती है देहाभिमान है, डर लगता है देहाभिमान है, जल्दीबाजी होती है देहाभिमान है, और ईर्ष्याद्वेषाद में देहाभिमान अभी भी है, ये निशानी है, और रिटर्न जर्नी है, लगता भी ठीक हो गया, फिर देखो कल फिर कल क्या हो, दूसरी फ्लाइट खुल जाएंगी, अगले पीछे अगले जन्म वाली, तो फिर चालू हो जाएगा, फिर चालू चालू रखो इसको, ये धीरेता रखनी पड़ेगी, गंभीर होकर करना पड़ेगा, और सहनशीलता, सहन करते जाना पड़ेगा, बोलना नहीं है, कोई कुछ भी कर दे बोलना नहीं है, बोला तो फायदे वापस खुल जाएंगे, सांप वो था 96 नंबर से सीधे 4 पे पहुंच जाओगे, नीचे 4 में पहुंच जाएंगे सीधे ना, बोलना नहीं है, सहन करके संभाल लेना है, सहनशीलता ही पाप कर्म भस्म करने का साधन है। तो ये निराकारी स्थिति से निर्विकारी स्थिति बनती है, इससे निर्विकारी तब बनते हैं, अश्वरी से निर्विकारी नहीं बनते, अश्वरी से मैपन मेरेपन का त्याग होता है, तब निराकारी स्थिति आती है, निराकारी बनकर निराकारी भाव से कंबाइंड होते हैं तो निर्विकारी स्थिति आने लगती है, निर्विकारी बनते हैं ना तो फिर मास्टर बीज रूप बनते हैं। तो अशरीर से निराकारी बनते हैं, मैपन मेरेपन का त्याग हो गया, और जब निर्विकारी बन जाते हैं तब जाके मास्टर बीज रूप बनते हैं, तो मास्टर बीज रूप बनते हैं तो बेहद की बीज रूप बाप से कलवृक्ष जड़ में बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर सारे कलवृक्ष की सेवा कर सकते, जितना जितना अश्वरी स्थिति का अभ्यास होता जाएगा, निराकारी स्थिति का अभ्यास होता जाएगा, उतना उतना हम मास्टर बीज रूप के सारे कलवृक्ष को सकाश देते जाएंगे। दादी गुलजार कहा करते थे, बहुत अच्छा बताते थे, कहते जो मिसाइल बनती है ना, मैंने मिसाइल बनाई 1000 किलोमीटर की, और मैंने मिसाइल चलाई 10 मीटर पर गिर गई, 1000 किलोमीटर तो पहुंची कहां, हम बैठ के सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं तो सकाश पहुंचता है क्या, सामने वाले को नहीं पहुंच रहा तो दूर कहां पहुंचेगा, है ना, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो जब तक मैं मास्टर निर्विकारी, जैसे जैसे मेरी स्थिति संपूर्ण निर्विकारी की बनती जाएगी, तभी मैं बाबा मास्टर बीज रूप स्थिति में बाबा से कंबाइंड होके तब सारे विश्व को सकाश दे, तब सारे ग्लोब को सकाश दे सकते, पर जिसको जिस आत्मा को जो चाहिए उसको मिल जाएगा, मुझे नहीं देना है, सैटेलाइट के थ्रू जाएगा, बाबा के थ्रू जाएगा, मुझे देना नहीं है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल में आपको मोबाइल यहां से यहां करूं तो मोबाइल आपके पास नहीं जाता है, सीधा कहां जाता है, टावर पे, टावर से सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से फिर आपके पास आता है, फिर टावर पे वापस आता है, फिर आपके पास आता है, आता सैटेलाइट से है तो मेरे पास से नहीं आता है, राइट। मैं बाबा को याद करता हूं, संकल्प मेरे पास है, उस आत्मा को फला तकलीफ है, बाबा उसको भर देता है। तो ध्यान रखना है कि विधि मनसा सेवा की विधि क्या है, बताया ना आज, अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति लाइट, डबल लाइट, तब स्थिति सेवा मनसा सेवा होती है। तो ये है विक्रम विनाश करने के लिए, पाप कर्म भस्म करना, और विक्रम विनाश करने की स्थिति क्या है, निराकारी स्थिति। अश्री स्थिति से मैपन मेरापन भस्म होगा, क्योंकि मैपन मेरेपन जड़ है सारे सारे पाप कर्मों की, सारे विकारों की, सारे विकर्मों की। तो जितना ये अभ्यास करते करते अपने आप ही बन जाएंगे आप, इसको हम बोलते हैं 0.001, परमात्मा शिव बाबा की कितनी 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 फ्रीक्वेंसी है? जीरो जीरो जीरो, टोटल जीरो। अशरीर स्थिति क्या है? एक से कम, 0.9। अशरीर स्थिति की डेप्थ कितनी है? 0.9, 0.8, 0.7, पॉइंट ऐसे करके 0.1 तक ना? और फिर निराकार स्थिति की डेप्थ क्या है? 0.1 से लेके 0.001। मैं आत्मा जीरो, मेरा बाप जीरो, अभी तक जो भी था मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तब मास्टर बीज रूप बन सकते हैं। थोड़ा भी अगर जो बीता है ना उसका थोड़ा भी संकल्प चला ना, थोड़ा भी कुछ हुआ ना, पास्ट का संकल्प आया, तो हम बीज रूप बन नहीं सकते। तो ये स्थिति हमारी संगठन में करनी है, हमको पावरफुल स्थिति बनानी है। ठीक है, तो क्या करना है? फिर स्टेप्स दोबारा याद कर ले, कौन से स्टेप्स थे? पहला स्टेप अंतर्मुखता, अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से कमांड को सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, व्यवहार में आना, हर कर्म बाबा की याद में करना, उससे बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। बेहद की ना वैर ना राग, सारे विश्व में किसी से वैर भी नहीं, किसी से राग अटैचमेंट भी नहीं, उससे अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति आएगी, ऊपर मन बुद्धि ऊपर लगेगी। तब शिव बाबा क्या होगा? तब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्रह्म जन्म देगा, तब दिल में बाबा आएगा, नया जन्म होगा ना, बाबा दिल में आ जाएगा, सॉरी तब बाबा दिल में आएगा। उस बाबा को अंदर अंदर रिवाइज रियलाइज करोगे ना, बार बार दिल से, सच्ची दिल से रिवाइज रियलाइज करोगे, बाबा को सच्ची दिल से, सच्ची दिल कहते हैं, तब तीसरा नेत्र खुलेगा, तब मुरली समझ में आएगी। मुरली को रिवाइज रियलाइज कर, मन ही मन बाबा रिवाइज रियलाइज करें। दो बातें थी, मन में रिवाइज रियलाइज करो, फिर दिल में रिवाइज रियलाइज करो। तो मन में जब रिवाइज रियलाइज, बाबा की मुरली मन में रिवाइज रियलाइज, फिर दिल से रिवाइज रियलाइज होगी ना, तो क्या होगा? फिर रिवाइज तो सिर्फ फुल स्टॉप, तीन बिंदी का अभ्यास हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, प्रैक्टिकल व्यवहार में शांति आ जाएगी, विचार चलने बंद हो जाएंगे, पास्ट के और भविष्य के विचार चलेंगे, वर्तमान में बस तीन बिंदी शांति, बाबा से कंबाइंड होकर कर्म योगी बन जाएंगे, और हर आत्मा के हर रोल, उसको हर रोल में स्वीकार करेंगे, किसी से हमारा राग द्वेष रहेगा नहीं। जब ऐसा होगा, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाएगी, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे, अत्यंत सुख की अनुभूति करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे, और फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? उसमें लवलीन हो जाएंगे, वहां से फिर अशरीर स्थिति बनेगी। इसे याद रहे, हमें कहां रहना है? लॉन्च पैड हमारा कौन सा है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म माना पवित्र, शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, वहां शुभ संकल्प और शुभ भावना और नैनों का इशारा वही काम करता है। ऐसे वाइब्रेशन, ऐसा हवा मंडल बन जाएगा, बस हम यहां रहते भी सूक्ष्म वतन में रहेंगे, तब अशरीर स्थिति का बार बार अभ्यास कर पाएंगे। अशरीर का अभ्यास करते करते मैंपन मेरापन खत्म होता है, व्यवहार में दिखाई देगा मैंपन मेरापन खत्म हो गया, तब निराकार स्थिति बनेगी, निराकार भाव से कंबाइन होंगे, तब हमारे निर्विकारी बनेंगे, तब मास्टर बीज रूप बनके कलब ऋषि जड़ में बीज रूप भाव से कंबाइन होंगे, तब हमारी स्थिति ऐसी बनेगी। इसको बोलते चित्त, हमारा चित्त जो है शांत हो जाएगा, एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। तो दिल सच्ची साफ है तो विवेक जागृत हो गया, तीसरी आंख खुल गई, निर्णय शक्ति माना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई, और चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय हो गया। अब चिंतन सारा दिन क्या चलेगा? इसे कहते हैं भटकती, ब्राह्मणों के दुश्मन क्या है? भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने स्वभाव। जब बुद्धि भटकती है, चंचल मन होता है, तो पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होते हैं, पाप कर्म बनते हैं, विकर्म होते हैं। और जब हमारी बुद्धि टिक गई ना, दिल में बाबा आ गया, तो बुद्धि क्या हो गई? टिक गई, शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हो गया। अब चिंतन क्या होगा? अब मुरली का चिंतन प्रैक्टिकल में चलेगा, बाबा ने जो कहा वही अंदर बजता रहेगा सारा दिन, उसी को रिवाइज रिवाइज करते रहेंगे। भावना, संकल्प से भावना बनेगी, भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे, वृत्ति बनेगी, वृत्ति माना सर्कल पूरा हो जाएगा, उसी में घूमते रहेंगे, वो हवा मंडल बन जाएगा, वायुमंडल बन जाएगा, उसको उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा, नई संस्कार बनते जाएंगे, नई स्मृतियां बनती जाएंगी, चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी। और हमारे कर्मों में जब आएंगे शरीर बन के, तो दैवी गुण बनते जाएंगे, व्यवहार आहार विहार बदलता जाएगा, कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्माजीत, कर्मातीत और लाइट हाउस और माइट हाउस बनके अंत की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बस बाबा से कंबाइंड होके सारे कलश को सकाश देते रहेंगे, अंत में बाबा की प्रत्यक्षता ऐसे होगी, राइट? ये चारों लाइट आत्मिक ऊर्जाएं इस शरीर के हर कोने में पहुंच रही, महसूस करो इसको।
अब मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार है, जिससे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट जो मेरी बर्थडे गिफ्ट है बाबा ने दी थी दिव्य ब्राह्मण जन्म होते ही, अब वो एक्टिव हो जाती है और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को पवित्र मन रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। पहुंच जाओ उस बाबा की सूक्ष्म वतन में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में, सागर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे स्नेह के सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों के सागर में समा जाओ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। रियलाइज करो इसको, महसूस करो कैसे मैं सागर में समाया हूं, ज्ञान के सागर में समाया हूं। पवित्रता के सागर में समाया हूं। शांति के सागर में समाया हूं। अर्थ सहित महसूस करो पवित्रता क्या होती है, शांति क्या होती है। सत्य और निस्वार्थ स्नेह के सागर में समाया। यही स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति है। मां के संबंध से दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंची। ज्ञान के सागर में समा गई, पवित्रता के सागर में समा गई, शांति के सागर समा गई, अतिंद्रिय सुख के सागर। ये बाबा का वर्षा है, बाप के रूप में वर्षा है। अतिंद्रिय सुख का सागर पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। स्वयं से भी संतुष्ट मैं आत्मा, बाप से भी संतुष्ट हूं, ब्रह्मा से भी संतुष्ट हूं और लौकिक अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट। देखो अपने परिवार को, देखो पहले लौकिक परिवार को देखो, सबसे संतुष्ट अलौकिक परिवार से देखो, वहां भी मैं सबसे संतुष्ट हूं। इच्छा मात्र अविद्या, कुछ नहीं चाहिए। तो लवलीन अवस्था आ गई, आनंद की स्थिति आ गई। यही विदेह स्थिति है। जैसे नदी सागर में समा करके सागर बन जाती है, बेहद हो जाती है, ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो गई, लवलीन हो गई,
इसमें समा जाओ, खो जाओ। ये बहुत ही रोमांचित स्थिति है, एक्सटेसी की स्थिति है। महसूस करो इस अतिंद्रिय सुख को और आनंद को। सूक्ष्म वतन से ये लवलीन स्थिति से हम अशरीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड हो, चले जाओ उसकी गहराई में, संकल्पों से परे की दुनिया में चले जाओ। संकल्प अवस्था शरीर से वापस लवलीन स्थिति में आ जाओ, महसूस करो उस लवलीन स्थिति, वापस अशरीरी बन जाओ। संकल्पों से परे वापस सूक्ष्म वतन में आ जाओ, अतिंद्रिय सुख को महसूस करो, बाबा से मिलने का सुख, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध के झूले, अतिंद्रिय सुख के झूले। स्वीट साइलेंस, लवली स्थिति, इच्छा मात्र अविद्या, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गए। डीप साइलेंस, अशरीरी स्थिति डेड साइलेंस, संकल्पों से परे। वापस सूक्ष्म वतन में आ जाओ, अतिंद्रिय सुख को महसूस करो। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। स्वीट साइलेंस, माता पिता शिक्षक के रूप में पढ़ाई, आदि मध्यान्ह की पढ़ाई, सुदर्शन चक्र,
सतगुरु के रूप में साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल, बंधु के रूप में सारा बोझ और बंधन बाबा के हवाले कर दो, डबल लाइट हो जाओ। बाबा सखा के रूप में बाबा को अपने दिल का हाल, जो भी कमी कमजोरियां बहुत डीप रूटेड हैं, कुछ भी सूक्ष्म स्थूल गलतियां होती हैं, सच्चा सच्चा समाचार सखा के रूप में बाबा को दे दो। जब ऐसा हम दिल से बिल्कुल सच्चा साफ डबल लाइट हो जाते हैं, तब बाबा हमारा साजन बन जाता है, तब बाबा हमको दैवी गुणों से सजा देता है, सर्वगुण संपन्न बना देता है। साजन का काम ही है सजाना, निसजनी को सजाना। जब हम साजन के साथ पतिवर्ता पितावर्ता बनकर रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तब बाबा मेरा सज्जन बन जाता है, तब रिटर्न जर्नी पर, तेरे से जन्मों की रिटर्न जर्नी पर बाबा हम में से छोटी छोटी कमजोरियां, कमी कमजोरियां, बंधन को खत्म करते हुए, हमें सब प्रॉब्लम से बचाते हुए हमें 16 कला संपूर्ण बना देता है, संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है, अहिंसा परमो धर्म अर्थात काम और कामनाओं को छोड़ा तो लाइट का ताज, क्रोध लो मोह अहंकार उनके अंश वंश को छोड़ा तो विश्व कल्याण की विवेक का ताज, ऐसी संपन्न और संपूर्ण आत्मा जब ऐसी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम बाबा पर बलिहार जाते हैं तब बाबा हमें महसूस कराता है मैं तुम्हारा बच्चा बनके तुम्हारे साथ सदा ही हूं। तो अतिंद्रिय सुख, ऐसे अतिंद्रिय सुख में खोए रहो, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का रस लो, झूले झूलो, इससे फिर लवलीन अवस्था में आ जाओ। सागर नदी में समा के सागर हो गए, ये स्थिति ऐसी स्थिति है जिससे हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं, हमारे शरीर के और मन के रोग भी खत्म होने लगते हैं। डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां और सभी बीमारियां अपने आप ही कम होने लगती है, पर इस अवस्था का निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, लवली अवस्था। लवलीन अवस्था से अशरीरी बन के परम धाम घर में डेड साइलेंस में चले जाओ, मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं, संकल्पों से परे, दे और दे के दुनिया से परे, स्थिति का निरंतर अभ्यास, मैं अपन और मेरेपन का अपने आप ही खत्म हो जाता है, उसका त्याग हो जाता है, मैं अपन मेरेपन के त्याग से निराकारी स्थिति का अनुभव होता है, मैं निराकारी आत्मा निराकार बाप से कंबाइंड हूं, इसी को तपस्या कहते हैं। इसमें दिल बुद्धि मन और तन एक ही स्थिति में टिक जाते हैं, यही ज्वालामुखी योग अग्नि है। इस मैंपन के त्याग में तपना है, मेरे प्यार मेरेपन के त्याग में तपना ही तपस्या है, यही मौज है। से मुझ मेरे अंदर जो पाप कर्म है, काम क्रोध लो मोह अहंकार और संस्कार आलस्य अलबेलापन, इनका वेग, इसके वेग को सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, भिन्न भिन्न जो संस्कार हैं आसुरी स्वभाव संस्कार उसको सहन सामना करने की शक्ति आ जाती है, और सहयोग करने की शक्ति, अर्थात परमात्मा के कार्य में सहयोग करने की शक्ति। चले जाओ इस अभ्यास में, मैंपन मेरेपन के त्याग में, त्याग के अभ्यास में, निराकार स्थिति के अभ्यास में। मैं आत्मा जीरो, मेरा बाप जीरो, जो कुछ हो गया मल्टीप्लाइड बाय जीरो, एकदम परे। लगन की अग्नि एक के साथ, किसी से निराकार, किसी से निर्विकार स्थिति आदि। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात आलस्य, मोटे विकार तो नहीं, आलस्य भी नहीं, अलबेलापन भी नहीं, अलर्ट और एक्यूरेट, सदा अलर्ट और एक्यूरेट, दोष दर्शन नहीं गुण दर्शन, बदला लेने की भावना नहीं रहम दिल, शक अनुमान नहीं निश्चय और विश्वास, चिंता और भय नहीं निश्चिंत और निर्भय, जल्दबाजी नहीं धैर्यता और विश्व कल्याणकारी की स्थिति, इसे कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। महसूस करो इस संपूर्ण निर्विकारी की स्थिति को। सब मैं आत्मा, सदा अलर्ट, सदा एक्यूरेट, गुणग्राही, रहम दिल, निश्चय और विश्वास, स्वयं पे भी निश्चय विश्वास, बाप पे भी संपूर्ण निश्चय और विश्वास, ड्रामा पर भी संपूर्ण निश्चय और विश्वास, लौकिक अलौकिक परिवार पर भी संपूर्ण निश्चय और विश्वास, निश्चिंत बेफिकर, निर्भय, धैर्यता और विश्व कल्याणकारी स्थिति, यही संपूर्ण निर्विकार स्थिति है। ऐसी स्थिति मुझे मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव कराती है। सदा जागती ज्योत, रहम दिल, बाप समान स्थिति, सबके गुणों का दर्शन करने वाले, हर बच्चे में निश्चय विश्वास, निश्चिंत और निर्भय, धैर्यता और विश्व कल्याण की, यह बाप समान स्थिति है, यही मास्टर बीज रूप स्थिति है। अब बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर कलह वृक्ष जड़ में बेहद की निस्वार्थ भाव से सेवा, पूरे कलवृक्ष सत्य उत्तरेता द्वापर कलयुग की सभी आत्माओं को इन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से बाबा से वो करंट मुझ आत्मा से होती हुई सभी सत्यों की आत्माओं तक पहुंच रही है। रॉयल फैमिली, साहूकार, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा और दास दासियों तक भी ये एनर्जी, सातों एनर्जी हर आत्मा तक पहुंचे, हर आत्मा संपन्न और संपूर्ण होती जा रही है। सत्युग की पहली 9 लाख आत्माएं अपने संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के सत्युग की सभी आत्माओं को सकाश दो। बाबा आपके द्वारा दे रहा है मास्टर बीज रूप स्थिति, वो पात्रता की स्थिति है जिसके द्वारा बाबा हर आत्मा को सकाश दे सकता है। अब त्रेता युग की रॉयल फैमिली, साहूकार, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा और दास दासियों तक भी ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं परमात्मा पिता से, मुझ आत्मा से होती हुई पूरे तने में आ रही। जुड़े रहो उस स्थिति में, उस संपूर्ण निर्विकारी, सदा अलर्ट, सदा एक्यूरेट, जागती ज्योत, सदा जागती ज्योत, रहम दिल और गुणग्राही, निश्चय विश्वास हर आत्मा पर, निश्चिंत और निर्भय अवस्था, धैर्यता और विश्व कल्याणकारी स्थिति, बीज रूप आपसे कंबाइंड। अब द्वापर की सभी आत्माओं को, रॉयल फैमिली, धर्म पिताएं, साहूकार, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, और द्वापर की सभी आत्माओं को भी सकाश देते हैं। तने से हो तो ये आत्मा, सातों एनर्जी द्वापर युग की सभी आत्माओं को सकाश, सातों चैतन्य आत्मा भी जाऊंगा सकाश। महसूस करो इसको, रियलाइज करो, सच्चे दिल से रियलाइज करो। ऐसे ही अब कलयुग की रॉयल फैमिली, धर्म पिताएं, अलग धर्म के, मठ पंथ के हेड्स, इंचार्ज, साहूकार, रॉयल प्रजा और साधारण प्रजा, हर आत्मा तक, कलयुग की हर आत्मा तक, लास्ट की आत्मा तक भी ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं की लाइट जिस आत्मा को जो चाहिए उस आत्मा तक पहुंच रहा है। यह है बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा। सारे विश्व बाबा से और विश्व की हर आत्मा से दुआएं स्वतः ही मिलती रहती हैं। हम दुआएं देते रहते हैं, दुआएं मिलती रहती हैं। ऐसी स्थिति मेरी बुद्धि को सच्चित आनंद स्वरूप बना देती है। बुद्धि भटकने के बजाय अब बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है। दिल में बाबा है, तीसरी आंख जागृत है, विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। अब चिंतन ऑटोमेटिक है, बस बाबा को और बाबा की मुरली का ही चलता है, वो ही संकल्प चलते हैं। आशिक माशुक वाली मोहब्बत है, स्नेह है, बस बाबा और बाबा की मुरली, वही विचार बार बार गहराई से, दिल की सच्ची लगन से, वही रिवाइज रियलाइज होते रहते अपने आप ही। वरदान स्लोगन व्यक्ति इशारा, सारा दिन उसको रिवाइज रियलाइज करते रहे, और वो विचार की गहराई में बार बार रिवाइज रियलाइज होते होते वही भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही शुभ भावना शुभ कामना के रूप में वाइब्रेशंस बाबा तक पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली है, बाबा तक वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और बाबा से मल्टीप्लाई होके पदम गुणा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पे आते हैं। यही याद है, सच्ची याद है, यही तपस्या है, यही योग अग्नि है, यही कैचिंग पावर टचिंग पावर है। जब हम सारा दिन इन्हीं विचारों को रिवाइज, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज रियलाइज करते रहते हैं, तो ये एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है, जिसे कहते वृत्ति, रूहानी वृत्ति बन जाती है, रूहानियत आ जाती है, रूहाब अर्थात ऑरा बन जाता है, वायुमंडल बन जाता है, रूहानी दृष्टि बन जाती है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का एक वायुमंडल बन जाता है, जिसमें ना मुझे खुद को वही शांत सातों एनर्जी महसूस होती है, बल्कि मेरे पास आने वाली सभी आत्माओं को वो आभा मंडल वायुमंडल महसूस होता है, शांति का, पवित्रता का, सच्चे स्नेह का, अतिंद्रिय सुख आनंद का, उनको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। ये ऐसी स्थिति है, निर्विघ्न तो मैं रहता हूं, किंतु निर्विघ्न विनाशक भी, दूसरों के विघ्न भी कम हो जाते हैं। अब इसमें रहकर जब कर्म करते हैं, देखना सुनना बोलना खाना पीना व्यवहार करना, तो रिकॉर्ड होते जाते हैं, तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के स्मृति स्वरूप, पवित्रता स्मृति स्वरूप की स्थिति में आ जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, शांति रिकॉर्ड हो जाती है, सच्चा स्नेह रिकॉर्ड हो जाता है, अतिंद्रिय सुख आनंद रिकॉर्ड हो जाता है। आठों शक्तियों को जब प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तो आठों शक्तियां स्मृति के रूप में रिकॉर्ड हो जाती है, तब चेहरे और चलन के द्वारा, चेहरा माना मन टीम, और चलन माना देखना सुनना बोलना खाना, इनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है। इसे ही स्मृति स्वरूप स्थिति कहते हैं। जब ऐसी स्मृति स्वरूप स्थिति में रह के भी हम अशरीरी और निराकार स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, तो सर्वगुण संपन्न हमारे संस्कार बन जाते हैं, 36 गुण हमारे संस्कार में आ जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी प्रैक्टिकल कर्मों में दिखाई देते हैं, और उसी अनुसार हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, आहार हमारा बदल जाता है, वैष्णव हो जाता है अपने आप ही, विहार अर्थात रहन सहन हमारा वैष्णव हो जाता है, यही स्थिति मुझे कर्मेंद्रिय जीत अर्थात मन और पांचों कर्मेंद्रियां इन पर विजय हो जाती है, और ये कर्मेंद्रिय जीत स्थिति माया जीत स्थिति पर ले जाती है, और जब माया जीत बन जाते तो प्रकृति जीत अर्थात ये शरीर भी, जो भी रोग हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज या जो भी रोग हैं, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, शरीर भी स्थिर हो जाता है,
तन मन की व्याधियां, संबंध संपर्क के दुख खत्म हो जाते हैं। और प्रकृति के पांचों तत्व भी सहयोग करने लगते हैं। महसूस करो इसको, कर्मेंद्र जीत तो माया जीत, फिर प्रकृति जीत, फिर विकर्मा जीत, फिर कर्मातीत। किसी कर्म का बंधन नहीं। बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, कर्म योगी बन के कर्म करते हैं। तो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति आ जाती है। यही मास्टर बिजरूप स्थिति है प्रैक्टिकल में, जो चलते फिरते हमारी प्रैक्टिकल स्वरूप का हर संकल्प बोल कर्म में, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, कल्प वृक्ष के साथ कंबाइंड, बीज की जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड होके आज भी सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। यही स्थिति हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति है।
Thank you.